जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरी वरधारी जय गिरी वरधारी। जय सदा नंदमा जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज कचार अष्टोदर श्रीमद्स डिवाइन ग्रेस शील भय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शील प्रभुपाद की इस्कॉन बुद्ध संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोदर श्रीमद्स डिवाइन ग्रेस शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरिगोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, शील प्रभुपाद ट्रांस सेंट्रल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, दाय गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 69। अतः तत् अपवाद अर्थम भज सर्व आत्मना हरिम पश्यन् तत् आत्मकम् विश्वम् स्थिति उत्पत्ति अप्यया यतः अतस्तत् अतस्तदपदवार्थम् अतस्तद् अपवादार्थम् भज सर्वात्मना हरिम् पश्यन्स्तदात्मकं विश्वम् स्थिति उत्पत्तया यतः अतस्तद् अपवादार्थम् भज सर्वात्मना हरिम् पश्यन्तद् आत्मकं विश्वम् स्थिति उत्पत्यप्यया यतः अतस्तद् अपवादार्थम् भज सर्वात्मना हरिम् पश्यन्तदात्मकं विश्वम् स्थिति उत्पत्यप्यया यतः अतः अत एव तत् उस अपवादार्थम् छुटकारा पाने के लिए भज भक्ति में लगो सर्वात्मना अपनी सारी इंद्रियों सहित हरिम भगवान को पश्यन देखते हुए तत् भगवान का आत्मकम वश में विश्वम दृश्य जगत स्थिति पालन उत्पत्ति सृष्टि अप्यया तथा संहार यतः जिससे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन हैं। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। तात्पर्य, भौतिक अवस्था में आत्म साक्षात्कार अथवा अपने को ब्रह्म या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि हम भगवत भक्ति अपना लेते हैं तो भगवान शनै शनै स्वयं को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रगतिशील भक्त को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पता चल जाता है। हम रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं देख पाते, किंतु जब धूप रहती है तो हम न केवल सूर्य को अपितु इस संसार की सारी वस्तुओं को भी देखते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् तदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हे पार्थ, अब सुनो किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं है। जब हम कृष्ण भावना भावित होने के उद्देश्य से अपने आप को भगवत भक्ति में लगाते हैं तो हम न केवल कृष्ण को अपितु उनसे संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना द्वारा न केवल कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी समझ जा सकता है, समझा जा सकता है। कृष्ण चेतना में रहकर हम यह समझ सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन तथा इसका संहार भगवान के द्वारा होता है। हम भी भगवान को भिन्नांश हैं, हम भी भगवान के भिन्नांश हैं, उन्हीं के नियंत्रण के से में सारी वस्तुएं हैं। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उनकी दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में लग जाएं। नारद तथा राजा प्राचीनी बरही के मध्य वार्तालाप, ये 29वां अध्याय चौथे स्कंद के श्रीमद् भागवत का। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से 12वें स्कंद तक मानव जीवन में चिंतन का मूल विषय क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बारंबार संकेत हुआ है। जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को तत्काल मृत्यु की घोषणा श्रृंगी ने कर दी, तो ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र, जिनका नाम था विष्णुराट, तस्मात् नामना विष्णुराट इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान, वो महाभाग्यशाली महाभागवत महाराज परीक्षित तत्क्षण सर्वस्व परित्याग कर यमुना जी के तट पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का विचार सुनने के लिए तैयार हो गए। और फिर वो स्वयं कहते हैं, तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्ष्णम् निर्वेद मूलो गृहशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुधत्ते। इस जगत का व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अपनी योजनाओं से बड़ा आसक्त रहता है, और जब हम देखते हैं कि हमारी योजनाओं के विपरीत कुछ होता है तो हम घबरा जाते हैं और उत्पात मच जाता है। तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आया है कि कृष्ण की योजना में और हमारी योजना में अंतर को ही भय कहा गया है।
कृष्ण ने अपनी योजना बनाई और मैंने अपनी योजना बनाई, लेकिन दोनों योजनाओं में जब अंतर है उसके कारण भय उत्पन्न होता है। और इसलिए हम लोग भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दो, तो भगवान हंसते हैं कि भाई मैं यहां खड़ा हूं आपको शिक्षा देने के लिए कि कैसे आप अपनी योजना मेरी योजना के अनुसार बनाओ। तो इसलिए जब तक भागवत का दर्शन प्राप्त नहीं होता, आज भारत भर में 20 लाख मंदिर हैं और उन सभी मंदिरों में जाकर लोग हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं बिना जाने कि ये मंदिर एक ऐसा अस्पताल है जिसमें डॉक्टर से दवा लेनी है, सारे यहाँ इस मंदिर रूपी अस्पताल में जाकर डॉक्टर को ही दवा देने के लिए चढ़े कि आप मेरे लिए ये करो, आप वो करो। अस्पताल हम जाते हैं डॉक्टर को अपनी योजना बताने नहीं, अपना प्रस्ताव बताने नहीं, मुझे यहां दर्द हो रहा है, मैं सोच रहा हूं मैं ऐसा करता हूं और आप इसके लिए अनुमति दें। तो डॉक्टर बैठा ही हुआ है हाथ में इंजेक्शन लेके, डॉक्टर बैठा ही हुआ है अपने हाथ में सर्जरी का ब्लेड लेके, तो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब किस समय अनुकूल प्रकार से वो हमारे ऊपर सर्जरी कर सके और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। तो इसलिए महाराज परीक्षित को अचानक जब इस प्रकार की योजना प्राप्त हुई कि उनकी मृत्यु होनी है, महाराज परीक्षित घबराए नहीं। कृपार समुद्र दीन हीने दयामय, कृष्ण कृपा बिना कोन सुख नहीं हुए। तो महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि वास्तव में मेरी योजना थी कि मैं बंगाल से जाऊं, लेकिन वृंदावन जाते जाते मैं यहां से आ गया झारखंड वन के माध्यम से। तो वास्तव में ये कृष्ण की कृपा है। कृपार समुद्र दीन हीने दयामय, इस बात को समझना आवश्यक है कि जिस प्रकार डॉक्टर जानता है कि पेशेंट के लिए अति आवश्यक क्या है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है। कृपार समुद्र दीन हीने दयामय, कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं हुए। तो इस प्रकार जब डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन हम देखते हैं और डॉक्टर इंजेक्शन के अंदर से दवा यूं यूं करता है और उसकी उंगली चलती है, तो उसको देखकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारा शत्रु है, वो डॉक्टर हमारा क्या है, मित्र है। क्योंकि वो जो अभी हमें देने वाला है उससे भले दर्द हो लेकिन उससे स्वास्थ्य परिवर्तन निश्चित है। तो कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं हुए, कृष्ण की कृपा के बिना जीवन में दूसरा कोई सुख है ही नहीं। अर्थात हर परिस्थिति में जो कुछ हमारे जीवन में आए वो सब कृष्ण के प्रसाद के रूप में ही देखना। तो इसलिए मंदिर में दो प्रकार के प्रसाद प्राप्त होते हैं, एक जो आज लेक्चर के बाद आपको मिलेगा वो तो गारंटीड है निश्चित, और दूसरा जो हमारे जीवन में घटना दुर्घटना घटे उन सभी बातों को कृष्ण का प्रसाद के रूप में देखना, ये कृष्ण की ही कृपा है, इस प्रकार उसे स्वीकार करना, ये भी बहुत बड़ा प्रसाद का विषय है। तो इसलिए हम लोग मंदिर में आते हैं उस प्रसाद को ग्रहण करने कि यहां से जब हम निकलें तो हर परिस्थिति को हम कृष्ण की कृपा के रूप में देख सकें और उस परिस्थिति में निरंतर कृष्ण की सेवा और कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा मन में सर्वोपरि बनाए रख सकें। तो इस संदर्भ में हम लोग मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जीवन परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, इसको कहते हैं दर्शन। तो एक तो भगवान का सुंदर स्वरूप का आपने दर्शन किया, लेकिन दूसरा दर्शन है कि जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल जीवन में घटे, आप उन सभी को कृष्ण की इच्छा स्वरूप, कृष्ण की कृपा के रूप में उसका दर्शन कर सको। इसलिए इनको कहा गया है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र अर्थात जो हम सभी को हमारे जीवन में घट रहे घटनाओं को कृष्ण की इच्छा के साथ संबंध कराने में सहायक हो। दे कनेक्ट अस, दे कनेक्ट द इंसिडेंट्स विच हैपन इन अवर लाइफ विथ कृष्णास विल। इसलिए इन शास्त्र को कहा गया है दर्शन शास्त्र। नाना शास्त्राणि कोयला भक्ति ग्रंथ सार, मूढ़ अधम जन रेते हो तारिला निस्तार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन इत्यादि को इन भागवत और अन्य ग्रंथों के आधार पर अन्य शास्त्रों का निरूपण करने का संकेत किया, जिससे जीव अधिक से अधिक समझ सके कि भगवान की कृपा मेरे जीवन में किस प्रकार प्रसारित हो रही है। प्रभुराज्ञाय कोयला सब शास्त्रेर विचार, ब्रजेर निगुड़ भक्ति कोरिला प्रचार। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को वृंदावन में रहकर शास्त्रों के निरूपण करने का आदेश दिया। प्रभुराज्ञाय कोयला, उस आज्ञा को उन्होंने स्वीकार किया, शास्त्र के ऊपर विचार किया और उस सदाचार और विचार के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की असीमित कृपा उन पर बरसी, जिसके माध्यम से उनके अंदर इस संदेश को प्रचार करने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हुई। तो इसलिए हम लोग इन शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन में दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं। और इतने बड़े सम्राट प्राचीन भर ही बैठे हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए श्रीपाद नारद मुनि उन्हें ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान के माध्यम से दृष्टिकोण में परिवर्तन। और जब दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है तो हर परिस्थिति में हम प्रेरणा का स्रोत प्राप्त करके कार्यशील होने में समर्थ होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का निरूपण किया, मंदिर तैयार किए, मंदिरों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन और भगवान श्री कृष्ण के हृदय के विचारों का दर्शन, दोनों दर्शन हम सभी को उपलब्ध कराया। और चौपाटी मंदिर में कोई एक फेस्टिवल चल रहा था, बहुत भीड़ थी, एक एकड़ जमीन में कितने लोग समा सकते हैं, और फिर हजारों की संख्या में भक्त लोग आए थे, लंबी लाइन लगी थी। तो अचानक मेरे सामने एक व्यक्ति आ गए और वो बोलने लगे कि भाई यहां पर भगवान के दर्शन कहां होते हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, ऊपर होते। तो उसने कहा मैं लाइन में लगा था, मुझे लगा वो दर्शन का लाइन था, पहुंचा तो प्रसादम काउंटर पे और सीधा मुझे प्लेट पकड़ा दिया। तो मैंने कहा मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, प्रसाद नहीं। वो बोले देखो निकलने का रास्ता नहीं है, अब आ गए हो न पीछे निकल सकते हो न आगे जा सकते हो, प्लेट लेके ही जाओ तो अच्छा है। तो मंदिर में सबसे पहले मैं प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद मैं सोचा कि चलो अब तो जाते हैं। फिर एक लाइन देखा, वहां खड़ा हुआ, सीधा पहुंचा जूते के काउंटर पे। मंदिर आया हूं भगवान का दर्शन करने, बाकी सब हो गया, अभी तक वो नहीं हुआ। तो मैं उनको ऊपर लेके गया, भगवान का दर्शन कराया और फिर उनको बताया कि भाई यहां पर दर्शन केवल विग्रह के नहीं, यहां पर दर्शन भगवान के हृदय के संकल्प का, उनकी इच्छा का, उनकी योजना का हमारे समक्ष होता है। और प्रथम स्कंद भागवत में जब भीष्मदेव उनकी स्तुतियों का वर्णन आ रहा है, उसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, सर्वम काल कृतम मन्य भवताम चिद प्रियम सपालो यत वशे लोको वायुर इव घना यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर प्रकोदर कृष्णोस्त्री गांडिवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत्ति। कि भगवान की योजना को क्या हम पूर्णता समझ पाएंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्रों का मूल मर्म भगवान की योजना को पूर्णता समझने के लिए नहीं, भगवान की योजना के सामने समर्पित होने के लिए। वी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कृष्णाज विल बट वी मस्ट सबमिट टू हिज विल। तो इसलिए ये शास्त्र हम लोगों को दिए गए हैं जिससे हम अपने जीवन में अपने हृदय की भावनाओं को भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं के साथ जोड़ सके। और कोई भी विचार जो हमें कृष्ण के इस योजना और विचार से भिन्न करे वो मायावी है। माया अर्थात वो जो हमारे हृदय की भावनाओं को कृष्ण की सेवा से दूर करे, और इसलिए उसे कहते हैं माया। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ठाकुर हरिदास सबसे पहले बेनापोल में रहते हैं, बेनापोल में भजन कीर्तन कर रहे हैं और वहां पर भी उनके ऊपर कुछ लोग आक्रमण करते हैं। रामचंद्र खान उनके बढ़ते हुए प्रभाव से परेशान होकर एक वेश्या को भेजते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर उनसे पराजित नहीं होते, विजयी होते हैं। और 3 दिन में वो जो वेश्या भक्त बन जाती है। प्रसिद्ध वैष्णवी होइला परम महंती, बड़ बड़ वैष्णव तारा दर्शने ते जानती। बड़ी प्रसिद्ध वैष्णव हो जाती है और बहुत प्रभाव उसका चारों दिशाओं में हो जाता है। तो ठाकुर हरिदास 3 दिन के अंदर उनको पराजित करने के बाद, उनको वैष्णव बनाने के पश्चात सोचते हैं कि यहां मेरी उपस्थिति से लोग परेशान हो रहे हैं, मैं यहां से निकल चलता हूं। तो वहां से निकले तो उसके बाद वो आए चांद्रपुर में, और चांद्रपुर में सोचा आराम से यहां रहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी के आश्रय में। और रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी गोवर्धन मजुमदार और उनके भाई हिरण्य मजुमदार, ये दोनों ठाकुर हरिदास जी की बड़ी अच्छी प्रकार से यदुनंदन आचार्य के घर के माध्यम से देखरेख कर रहे थे। और दास गोस्वामी भी रोज उस समय उनको आकर मिलते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। लेकिन वहां की सभा में भी एक समस्या उठ खड़ी हुई और गोपाल चपल नाम के एक टैक्स कलेक्टर ने आकर उनका अपमान किया, और तत्पश्चात अभिश्राप प्राप्त होने पर गोपाल चपल की नासिका टूट गई। और फिर ठाकुर हरिदास सोचने लगे, मैं यहां कीर्तन कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, यहां पर भी लगता है लोग मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं, इसलिए चांद्रपुर छोड़कर ठाकुर हरिदास निकले। और अब सोचते हैं कि मुझे बेनापोल में शांति नहीं मिली, चांद्रपुर में शांति नहीं मिली, चलो आते हैं शांतिपुर, तो कम से कम शांतिपुर में तो शांति मिले। और शांतिपुर में आते हैं अद्वैत आचार्य के यहां पर, और अद्वैत आचार्य के निवास स्थान के निकट एक गुफा है, उस गुफा में बैठकर वो नाम जप करने लगते हैं। और कहा जाता है, जगत निस्तारी लागे करे न चिंतन, अवैष्णव जगत के मोने होई बे मोचन। तो अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर दोनों की जोड़ी बड़ी प्रभावशाली थी। जगत निस्तार लागी कोरेन चिंतन, केवल उनके मन में एक बात का चिंतन लगा रहता था कि इस जगत का निस्तार कैसे हो, उद्धार कैसे हो। अवैष्णव जगत के मोने होई बे मोचन, ये अवैष्णव जगत किस तरह से उद्धारित हो। तो अवैष्णव जगत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि इस जगत के लोग निरंतर अपने स्वार्थ के विषय में चिंता करते रहते हैं। तो जैसे ही स्वार्थ की भावना उत्पन्न हुई, वो वैष्णव तत्व से विपरीत हो जाता है। इसलिए अवैष्णव शब्द का अर्थ है जो स्वार्थ से प्रेरित कार्य, और वैष्णव अर्थात स्वार्थ से विहीन, निःस्वार्थ सेवा भाव से युक्त, हम दूसरों का भला करें, उपकार करें। इसलिए इसको कहा गया है अवैष्णव जगत के मोने होई बे मोचन। तो श्रील प्रभुपाद पूरे विश्वभर में प्रचार किए केवल इस दृष्टिकोण से कि जगत में लोगों के मन में विचारों का परिवर्तन हो सके, और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व के कोने कोने में जाकर प्रचार किया और कृष्ण भक्ति के विजय पताका को फहराया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि विचारों में परिवर्तन लाना हो तो लोगों के अंदर गीता भागवत का ज्ञान देना होगा, तब जाकर प्रभुपाद जी ने इतने ग्रंथों का वितरण करवाया। तो प्रभुपाद जी ने आरंभ में सोचा नहीं था कि किताब इस प्रकार से वितरित होंगे। एक भक्त पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भर के पैसा देने के समय कुछ छुट्टे की आवश्यकता थी, तो छुट्टे के रूप में उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा चलो कृष्णा बुक दे देते, तो कृष्णा बुक पकड़ाया और वो पेट्रोल पंप वाले ने मान भी लिए। तो ले लिया तो इनको लगा कि ये तो गया, तो मंदिर में आके रिपोर्ट किया कि आज हमने ये कृष्णा बुक दिया चेंज के बदले में, तो लगता है लोग ऐसे ही लेने के लिए तैयार हैं। और तब से बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, और आज पूरे विश्व भर में पिछले 50 वर्षों में इस्कॉन के भक्तों ने 50 करोड़ भगवद गीता वितरित कर दिए। और तब से स्टार्ट हो गया मैराथन, और इस वर्ष पूना के इस्कॉन ने हर वर्ष की तरह किताब वितरण करते हुए 3 लाख के ऊपर महाबिग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। रशिया में कॉन्फ्रेंस चल रहा था डॉक्टरों का, वहां पर टेबल लगा हुआ था, तो एक डॉक्टर बाहर निकला, एक 22-23 वर्ष का नौजवान खड़ा होकर वितरित कर रहा था बुक, तो बड़ा ही प्रभावशाली लग रहा था। उसको देख के वो डॉक्टर रुक गया, और डॉक्टर उसको देख के बोलता है कि ये बुक्स किसके लिए है। तो व्यक्ति बोलता है बुक्स आपके लिए है, आप जो अज्ञान में हो, आप जैसे करोड़ों लोगों के लिए है। डॉक्टर को लगा ये दिखने में तो ये बच्चा लगता है, लेकिन बोलने में बड़ा जोर है। पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, तो भक्त ने कहा किसकी उम्र, शरीर की कि आत्मा की। डॉक्टर और बिल्डर हो गया, बोला दोनों की बताओ। तो बोले शरीर 22 वर्ष का है और आत्मा सनातन है। तो डॉक्टर उसको ऊपर से नीचे से देखा, बोले तो बिल्कुल अद्भुत व्यक्ति लगता है। ये बुक पढ़कर इसके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया, तो चलो आत्मविश्वास पाने के लिए हम ये बुक ले ही लेते हैं। तो उसने बुक ले लिया, आज वो इनिशिएटेड डिवोटी बन गया। तो ये बात तो हमने देखा है कि जैसे ही 6 महीना कोई गीता पढ़ने लगता है और इस्कॉन का डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स और ये सब जो भी समझकर 2-3 माला भी जप करने लगता है, उसके अंदर आत्मविश्वास इतना आ जाता है कि पूछो मत, दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार। एनी क्वेश्चन पूछो। तो इस तरह का भाव कहां से आता है? मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करने लगा, तो उस समय भक्ति रसामृत महाराज जो आते थे वहां पर, उन्होंने एक सैटरडे का लेक्चर पूरा डार्विन के ऊपर दिया और जबरदस्त धज्जियां उड़ाई। मतलब मेरा तो पहले से इतना कुछ खास प्रेम था नहीं, क्योंकि हम तो सब देवी देवता की पूजा करते थे, गणपति की भी पूजा करते थे और उनकी कृपा से ही पास होते थे। तो कहां ये डार्विन भार्विन के ऊपर अपना पूरा विश्वास आ जाए। लेकिन डार्विन की कृपा न मिले तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग जो भी चाहिए लिख डालते थे। तो जब उन्होंने इस तरह एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, और उनका स्टाइल भी बड़ा अच्छा था कि चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन एक एक शब्द जो निकल रहा था मिसाइल की तरह, तो मैं बिल्कुल अवाक रह गया कि डार्विन तो इतने प्रतिष्ठाशाली और इतने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उनकी इस प्रकार से मानहानि हो रही है यहां पर, और बाकी सभी लोग सर हिलाते जा रहे हैं, हां में हां मिला रहे हैं। और मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कुछ आर्ग्यू करूं नहीं करूं, लेकिन आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल तगड़े हैं और उसके विपरीत आर्ग्यू करने के लिए मेरे पास भी इतना कुछ पॉइंट्स नहीं। और फिर उनके पीछे जो था पूरा गरम गरम प्रसाद भी रखा हुआ था, मैंने कहा ज्यादा प्रश्न पूछो तो शायद मिलेगा नहीं। तो जो भी था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। ज्यादा आर्ग्यूमेंट डिटेल में समझा तो नहीं, लेकिन ये समझ गया कि डार्विन जो था जो भी बोला सब बकवास। तो मैं गया अपने हॉस्टल में, और मेरे जो रूम के बगल वाला जो था, उसको अभी अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले PhD का ऑफर मिला था अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से डार्विन फिलॉसफी में। तो मैंने कहा भले समझू नहीं समझू, लेकिन ये बहुत डींगे हाँ कर रहा था पिछले हफ्ते मेरा PhD हो गया, इसका थोड़ा हवा निकालता हूं। तो ऐसा नहीं कि कुछ प्रभुपाद की फिलॉसफी को समझ के, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ तो है अपने पास बारूद, यहां पे उड़ाते हैं उसको। उसके रूम में घुसा और मैंने कहा पता है क्या? मैंने कहा क्या? डार्विन ने जितना कहा सब बकवास है, तेरा PhD बकवास है, तेरा अमेरिका जाना बकवास है। तो वो इतना भड़क गया, तो कहने लगा कि मुझे लगा इस्कॉन के लेक्चर में जाके तेरी दिमाग ठीक होगी, लेकिन यहां तक तो तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे लोग। और पूरे विंग के सब लोगों को बुला लिया और सब लोग मिलकर मुझ पर चढ़ गए और सब दुनिया भर के प्रश्न पूछने लगे जिनका उत्तर मेरे पास था नहीं। तो मैं कुछ समय के बाद बोला कि मुझे पढ़ना में जा रहा हूं करके भाग गया। मंदिर में आकर महाराज जी को पूछा कि वो आप इतना सारा आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वो कहां से था, आपने कुछ रिसर्च किया है कि क्या? तो उन्होंने केवल वो छोटा सा बुक निकाल के दे दिया, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो मैंने कहा ये इतना छोटा सा बुक, इतने छोटे बुक के अंदर से आपने इतना कैसे? तो बोला सारा जितना कुछ है पूरा निचोड़ इसके अंदर है। लेकिन नहीं, और महाराज ने कहा अरे कुछ विस्फोट करना हो तो एक छोटा सा बम काफी होता है, लेके जाओ। तो मैं पूरा वीकेंड उसको पढ़ने लगा और ऐसा पढ़ रहा था कि सोमवार को जाके लड़ना है उनके साथ पॉइंट बाय पॉइंट। तो पूरा कंठस्थ करके गया और मैंने सोचा कि सुबह सुबह लेट उठते हैं तो सुबह सुबह जाकर उनको जगाएंगे तो उस समय उन लोग वीक पोजिशन में रहेंगे। तो सोमवार को जाके सुबह 7:30 बजे खटखट किए, वो आंखें खोल खोल के ऐसे बोले क्या हो गया यार? मैंने कहा डार्विन बोगस है और मेरे पास ये सारा आर्ग्यूमेंट है करके दन 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 सुना डाला पूरा। वो इतना नींद में था, बोला नहीं नहीं सही बात है, वो बोगस है तुझे। उसके बाद फिर वो लोगों ने कभी मुझे परेशान नहीं किया। तो वास्तव में प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों के अंदर इतना कुछ शास्त्र का निचोड़ सिस्टमैटिक दे दिया। इसका परिणाम क्या होता है कि कृष्ण भक्ति हमें क्यों करनी है और कृष्ण के साथ संबंध क्यों जोड़ना है यह स्पष्ट होता है। और भक्ति के जीवन में जो कोई भी अड़चन बाधा और समस्या आए तो अभी हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करना हो और उन चुनौतियों को लांग कर आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसको कहते हैं इंटेंशन। ऑल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बिकॉज अवर इंटेंशन फॉर अ सर्टन एक्टिविटी इज नॉट डीप इनफ। जब फाउंडेशन तगड़ा नहीं रहता तब कुछ हवा का झोंका चला तो फिर बिल्डिंग गिर जाएगा। हम लोग जब इको विलेज में गौशाला बना रहे थे तो गौशाला के फाउंडेशन का बहुत तगड़ा डिजाइन दिया तो फिर मुझे शक हुआ कि इतना भारी भरकम क्यों दिया है, क्योंकि गौशाला तो कुछ पूरा बिल्डिंग है नहीं, केवल शेड टाइप का है। तो फिर सब हम लोग चर्चा करने लगे शायद आर्किटेक्ट पैसा खाने वाला है, इसके लिए परसेंटेज बेसिस पे उसको मिलता है इसलिए भारी डिजाइन किया है। तो फिर किसी ने कहा रे डायरेक्ट पूछ ही लो। तो जब पूछा तो फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने बताया कि वहां के जो उन्होंने वेदर का डेटा लिया उसके हिसाब से साल में 3-4 दिन बहुत भयंकर तूफान चलता है पर्वत के सामने से, और जब वो तूफान आए तो उस तूफान के आगे ये खड़ा रह सके इसलिए उन 3-4 दिनों की सुरक्षा के लिए ये दिया गया है। अन्यथा सामान्य सा बना दो तो बाकी साल भर चल जाएगा, लेकिन वो 3-4 दिन जब भयंकर तूफान चले वो हैंडल नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार हमारे कई आध्यात्मिक गतिविधि दिखने के लिए सामान्य लगते हैं और वो उन गतिविधियों को प्रतिदिन हम लोग अपने फेसबुक पे या ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे विज्ञापन करने योग्य नहीं होता। लेकिन अगर वो कार्य न करो तो फिर जब जीवन में जब तूफान चले तो फिर आपके आध्यात्मिक प्रगति की इमारत तत्क्षण गिर जाएगी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं जगत निस्तार लागे करे न चिंतन अवैष्णव जगत के मने होई बे मोचन। ये संपूर्ण जगत अवैष्णव तत्वों से भरा हुआ है, ऐसे अवैष्णव जगत के बीच में अगर वैष्णवता के सिद्धांतों का विज्ञापन करना हो तो कितनी शक्तिशाली वैष्णव पद्धति को हमें अपनाना आवश्यक है। दुई जने भक्त्ये चैतन्य कोयला अवतार, नाम प्रेम प्रचारी कोयला जगत उद्धार। तो ठाकुर हरिदास और अद्वैत आचार्य के समन्वय से दुई जने भक्ति चैतन्य कोयला अवतार, दोनों जनों के प्रेममय प्रार्थना से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और नाम प्रेम प्रचारी कोयला जगत उद्धार, और दोनों ने मिलकर नाम और प्रेम का प्रचार किया। तो महाप्रभु को इस जगत में उतारने का श्रेय ठाकुर हरिदास और अद्वैत आचार्य को जाता है। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के वास्तविक प्रेममयी प्रार्थना का आदान प्रदान करते हुए प्रकट होते हैं। उसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर भी भगवान हमारे प्रयासों के कारण नहीं, हम जब वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उनके आशीर्वाद और प्रार्थना के परिणाम स्वरूप भगवान हमारे हृदय में अवतरित होंगे। तर्क न करे तर्क अगोचर तार रीति, विश्वास करिया सुन करिया प्रतीति। तो अब एक सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जब शांतिपुर में थे उस गुफा के अंदर, तब एक घटना घटी और उस घटना के विषय में आप तर्क मत कीजिए, विश्वास पूर्वक सुनिए, ऐसा कह के वो कथा सुनाते हैं। ज्योत्स्नावती रात्रिये दशदिक सुनिर्मल, गंगार लहरी ज्योत्स्नाए कोरे झलमल। तो रात्रि का समय था और आसमान में चंद्रमा चमक रही थी, ज्योत्स्नावती रात्रि, और ऐसे चारों तरफ प्रकाशमान स्थिति में गंगार लहरी ज्योत्स्नाए कोरे झलमल, चंद्रमा के प्रकाश से गंगा की लहरें चमक रही थी। और उस समय ठाकुर हरिदास ऐसे मनमोहक परिवेश में उस गुफा के अंदर बैठकर अपनी चित्त वृत्ति को निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आविष्ट करके जप कर रहे थे। द्वारे तुलसी ले पाप पिंडार ऊपर, गोफार शोभा देखी जुड़ाए अंतर। तो ठाकुर हरिदास अपने गुफा के एक कोने में तुलसी जी रखे थे और तुलसी महारानी को रखकर वो वहां बैठकर निरंतर नाम जप कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोफार शोभा देखी, उस गुफा के शोभा को देखकर लोकेर जुड़ार अंतर, लोगों का चित्त आनंदित हो रहा था। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो गुफा बड़ा ही सामान्य था, उसमें कोई प्रभावशाली तत्व नहीं था, कोई बड़े बड़े फर्नीचर नहीं लगे थे, कोई इंटीरियर नहीं डिजाइन किया था, लेकिन फिर भी गोफार शोभा देखी लोकेर जुड़ाए अंतर। लेकिन उसका सौंदर्य का मूल स्रोत क्या था? वो बाहरी रूप से स्वच्छ था और ठाकुर हरिदास के आंतरिक स्वच्छता को परिलक्षित कर रहा था। तो इसलिए वास्तविक सौंदर्य हमारी चेतना से प्रकट होता है, और इसलिए कृष्ण भक्ति का हम पालन अपने जीवन में इसलिए करते हैं जिससे हमारे मन के भीतर इंद्र तृप्ति की दुर्वासना से उत्पत्त दुर्गंध तत्क्षण नष्ट हो सके और कृष्ण भक्तों का ये मूल कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस कृष्ण भक्ति के सुगंध को लोगों के बीच पहुंचाएं। तो ठाकुर हरिदास निरंतर जप कर रहे थे और ठाकुर हरिदास जी पूर्णतः निमग्न थे, और तब वहां पर साक्षात माया देवी प्रकट हो गई। क्योंकि पहले ठाकुर हरिदास को वेश्या ने आके आकर्षित करने का प्रयास किया, वो विफल हुई। फिर गोपाल चपल ने उनके साथ वाद विवाद किया, वो भी विफल हुए। अब साक्षात माया देवी आ रही है, तो उसका वर्णन यहां पर आ रहा है। तार अंग गंधे दशदिक आमोदित भूषण ध्वनि ते कर्ण होए चमकित। तो उनके अंग के गंध से चारों दिशाएं मोहित हो रही थी। तार अंग गंधे दशदिक आमोदित और भूषण ध्वनि ते, और जितने उनके आभूषण थे, भूषण ध्वनि ते कर्ण होए चमकित, उससे कान आकर्षित हो रहे थे। और वो आकर ठाकुर हरिदास को उस गुफा के एकांत में कहने लगी, जग तेरा बंधु तुमी रूप गुणवान, मोर संग लागी मोर एथा के प्रयाण। वो कहती हैं कि आप तो जगत के बंधु हो, रूप गुणवान हो, तो वो संग लागी मोर एथा के प्रयाण, और आपका संग लाभ प्राप्त करने के लिए मैं यहां पर आई हूं। मोर अंगीकार कर होइया सदय, दीने दया कर एई साधु स्वभाव होए। तो माया देवी कहती है कि साधुओं का स्वभाव होता है कि वो दीनों पर दया करे और कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। मोर अंगीकार कर होइया सदय। तो इस प्रकार वो ठाकुर हरिदास से प्रार्थना करती है, आग्रह करती है। एत बोली नाना भावे कर ये प्रकाश, यहार दर्शने मुनिर होए धैर्य नाश। और तत्पश्चात वो माया देवी अलग अलग प्रकार से अपने अंगों का प्रदर्शन करने लगी, जिससे मुनियों का भी धैर्य नष्ट हो सके। लेकिन ठाकुर हरिदास ये सब देखकर स्थिर रहे और उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसको कह रहे हैं, निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोलते लागीला तारे होइया सदय। सो ठाकुर हरिदास इन सभी आकर्षणों को देखकर निर्विकार रहे। तो यह सबसे प्रमुख मुद्दा इस प्रसंग का है। निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, क्यों? क्योंकि उनका आशय गंभीर था। ठाकुर हरिदास डिड नॉट बिकम डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज हिज इंटेंशन वॉज डीप। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है कि जब लंबे समय तक हम भक्ति करते हैं तो हमारा इंटेंशन, हमारी आशा कितनी गंभीर है। कृष्ण भक्ति और कृष्ण की सेवा और कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा कितनी तीव्र है, प्रामाणिक है, गंभीर है। निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोलते लागीला तारे होइया सदय। तो इसलिए ठाकुर हरिदास अपने समक्ष माया देवी के लीलाओं को देख रहे थे। लेकिन हम अपने जीवन में अपने चारों तरफ चल रहे विभिन्न प्रकार के प्रयासों को, प्रयत्नों को, परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। वी हैव नो कंट्रोल ओवर डिस्ट्रैक्शंस। तो यहां पर साक्षात माया देवी आई है और हरिदास ठाकुर के मन को विचलित करने का प्रयास कर रही है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कितने ही अलग अलग प्रकार से मन को विचलित करने के लिए तत्व उपस्थित होते हैं। देयर इज नो लिमिट टू सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। और यह कलयुग की विशेषता है कि नहीं? कलयुग का नाम ही है एज ऑफ क्वारल, हिपोक्रेसी एंड डिस्ट्रैक्शन। कलयुग में हर प्रकार के मन को विचलित करने के साधन उपस्थित हैं। तो जैसे माया देवी हरिदास ठाकुर के सामने उपस्थित हो गई, वैसे हमारे लिए तो एक स्मार्टफोन ही काफी है। निर्विकार हरिदास, लेकिन ठाकुर हरिदास निर्विकार रहे, उनका भाव परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? गंभीर आशय, उनका आशय बिल्कुल गंभीर था। और वो आगे कहने लगे जो और अधिक महत्वपूर्ण है, संख्या नाम संकीर्तन ए महायज्ञ मन्ये ताहते दीक्षित आमी होई प्रतिदिने। वो कहने लगे मैंने दीक्षा ली है, ताहते दीक्षित आमी होई प्रतिदिने, प्रतिदिन नाम लेने का व्रत लिया है। संख्या नाम संकीर्तन ए महायज्ञ मन्ये, इसको मैं महायज्ञ मानता हूं। यज्ञ का अर्थ क्या है? सैक्रिफाइस। महायज्ञ मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस। क्या है? नाम संख्या संकीर्तन, कि जब तक संख्या स्वरूप नाम पूर्ण न हो, बाकी अन्य सभी कार्यों को, विचारों को त्याग दो। सैक्रिफाइस, वी हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग एल्स टिल संख्या नाम संकीर्तन ए महायज्ञ मन्ये। तो अपने दूसरे कार्यों को, दूसरे विचारों को, दूसरे हर प्रकार के वार्तालाप को हमें बगल में रखना है, जब तक संख्या नाम संकीर्तन पूर्ण न हो। ताहाते दीक्षित आमी होई प्रतिदिने, जावत कीर्तन समाप नहे न कोरी अन्य काम, कीर्तन समाप्त होइले होए दीक्षार विश्राम। तो ये एक श्लोक अगर भक्त लोग अपने जीवन में उतार लिए तो पूरा इस्कॉन बदल जाएगा। क्रांतिकारी श्लोक है ये। क्या कहते हैं ठाकुर हरिदास? तो कई बार हम लोग को लगता है कि वो तो ठाकुर हरिदास के सामने माया देवी आके आकर्षित की, हमारे सामने तो कभी कोई ऐसा किया ही नहीं। वो माया देवी मतलब सोचो कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से वो प्रकट होगी, लेकिन उसका कार्य क्या है? आपके नाम जप से और आपके ध्यान से विचलित करना। यावत कीर्तन समाप्त न है, जब तक कीर्तन समाप्त नहीं होगा, अर्थात जब तक हम माला पूरा नहीं करेंगे, न करी अन्य काम, ठाकुर हरिदास कहते हैं तब तक मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। कीर्तन समाप्त होइले, जब मेरा हरिनाम समाप्त होगा, कब होगा? होए दीक्षा र विश्राम, तब जाकर मेरा वो दीक्षा का व्रत लेने के बाद फिर मैं विश्राम करूंगा, तब तक परिश्रम करता रहूंगा। अब ये मत सोचो कि ठाकुर हरिदास हमारे जैसे 16 माला करते थे। हो सकता है कुछ लोग आप में से नए हो और सोच रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, 2 घंटा तो विश्राम नहीं करना चाहिए। 22 घंटा जप रहे थे। जावत कीर्तन समाप्त न हे न कोरी अन्य काम, बोले जब तक मेरा 192 राउंड्स नहीं होगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी दीक्षा के अनुसार व्रत लिया है। तो सोचिए ठाकुर हरिदास 64 माला करते थे उच्च स्वर में, 64 माला करते थे बिल्कुल धीमे धीमे ध्वनि में, और 64 माला करते थे मानसिक। मानसिक का मतलब नाम सुनते थे, ये मत सोचो मानसिक मतलब आंख बंद किया और समाधि लग गई। 64 64 64 इस तरह उनका चलता था 192। और यावत कीर्तन समाप्त न हे न कोरी अन्य काम, तब तक कोई हम दूसरा काम नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने ये संकल्प लिया था। इसलिए श्रील प्रभुपाद जानते हैं कि हम लोगों की औकात नहीं 192 करने की। ठाकुर हरिदास जी के तिरुभाव दिवस पर अपने भक्त लोग प्रयास करते हैं, कई लोग, तो आप लोगों को अनुभव होगा कि वो कितना कठिन होता है। तो ये प्रतिदिन ऐसा कर रहे थे, और वही मुझे समझ में नहीं आता कि इतना माला करने वाला व्यक्ति न किसी के साथ कुछ कलह कर रहा है, टाइम ही नहीं है किसी के साथ विवाद करने, न किसी का बिगाड़ रहा है, न किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कहां से कहां कुछ न कुछ समस्या आती है। तो ये मत सोचो कि 16 माला कर रहा हूं प्रॉब्लम आ रहा है, 32 करूंगा नहीं आएगा, 64 करूंगा तो नहीं आएगा, 120 करूंगा तो नहीं आएगा। अरे 192 करने वाले के जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सुन के ये मत सोचो तो फिर करूं ही क्यों, 4 ही कर लेते हैं। यात्रा में हम लोग गए थे, रात्रि का समय था, मेरे रूम पार्टनर एक थे, वो बगल में मेरे बैठकर बड़ा क्रोध से हाथ में माला लेकर तकिया को देख रहे थे। मैं बोला क्या हो गया, आज तो बड़ा अच्छा लेक्चर दिया महाराज ने, सब खुश थे, तुम बड़ा एंग्री दिख रहे हो, क्यों क्या हो गया? तो उसने कहा अभी मेरा 10 माला बाकी है। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है तो कर लो। तो इतना गुस्से से बैठ के काफी 5-7 मिनट से क्या सोच क्या रहे हो? बोले मैं सोच रहा हूं मुझे इस्कॉन में लाया कौन। रात को 10 बज गए और 10 माला बाकी है, लगता है सोचने से पहले जल्दी आ गया मैं। तो इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है हम लोग को समझने कि भक्ति स्वाभाविकी होनी चाहिए, बलोत्पादिता नहीं। स्वाभाविक अर्थात हम लोग अपने हृदय के अंतःकरण से स्वयं निर्णय लें कि मैं भक्ति कर रहा हूं। सामाजिक प्रतिबंध के अंतर्गत भक्ति मत करना, क्योंकि इसने कर रहा, इसने लिया, इसने किया, इसने किया, ये भी 16 पे आ गया, ये भी दीक्षा लेने लगे, ये भी ये कर रहा, ये भी भक्ति शास्त्री हो गए, ये भी ब्राह्मण हो गए। तो वैष्णव सत्संग के कई लाभ हैं, लेकिन सत्संग चाहे वैष्णवता के ऊपर आधारित क्यों न हो, लेकिन हम सभी अंततोगत्वा मानवीय प्रवृत्तियों के अधीन जंजीर से जकड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसे मानसिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अगर हम सोचने लगे कि अगर मैं ये नहीं किया या वो नहीं किया तो सामाजिक रूप से मान हानि होगी, तो सामाजिक कारणों से अगर कोई भक्ति करना आरंभ करता है या भक्ति में निर्णय लेता है तो आगे चलकर उसकी वही भक्ति बलोत्पादिता होने लगेगी, अर्थात कोई कृत्रिम दबाव के अंतर्गत वो भक्ति कर रहा है। अंदर से प्रेरणा नहीं है लेकिन बाहरी कारणों से वो भक्ति कर रहा है जबरदस्ती, तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। और निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, और उसका उसकी जो आशा या इंटेंशन अगर तीव्र नहीं रही तो वो निर्विकार नहीं, कोई ना कोई समस्या आने पर समाप्त हो जाएगी या शिथिल पड़ जाएगी। तो इसलिए जब कोई मूवमेंट बढ़ता है और जो नंबर्स बढ़ने लगते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि ये समझ पाना बड़ा कठिन होता है कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो वास्तविक प्रामाणिक आध्यात्मिक कारणों से जुड़ रहे हैं या सामाजिक कारणों से आकर्षित होकर जुड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने हृदय के अंतःकरण में टटोल कर पूछना है और जब प्रचार करते समय भी इस बात को स्पष्ट कराना है कि भक्ति का मार्ग बहुत लंबा चलेगा, और ये भी लोगों के सामने प्रमाणित करना है कि भाई ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में केवल आनंद ही आनंद है, हम भी बहुत ठोकर खाए हैं, हम भी बहुत मार खाए हैं, खा रहे हैं और खाते रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर का अर्थ है कि इस साल में कैसे मार खाएं उसकी तैयारी करें। तो यहां पर माया देवी वहां बैठ गई, द्वारे वसी शुन तुमि नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति होइले करिमु तव प्रीति आचरण। ठाकुर हरिदास कहते हैं यहां बैठ जाइए, आप द्वार पर बैठ जाइए। तो यह भी आवश्यक है कि जब डिस्ट्रैक्शन आए तो ठाकुर हरिदास ये नहीं कह रहे कि गुफा से भाग गए और गुफा से भागने लगे और वो माया देवी पीछे भाग रही है और ठाकुर हरिदास पेड़ पे चढ़ गए और वो भी चढ़ गए, दूसरी तरफ से उतरे, फिर गए पहाड़ पे चढ़े। तो ऐसा ये पीछा करने वाला कुछ मामला नहीं था, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ और ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओ, और कभी कभी आपको लगता होगा NBCC में बहुत लोग आते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया, गुफा में बैठता हूं, गुफा में आ गए। ठाकुर हरिदास का प्रॉब्लम गुफा में हुआ, कोई संडे फीस्ट में नहीं हुआ। तो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओ समस्या आएगी, उससे भागना नहीं है, आपको अंदर जाना है। ए मत तीन दिन कोरे आगमन, नाना भाव देखाई जाते ब्रह्मार हरे मन। तीन दिन वो निरंतर आती रही और ऐसा भाव प्रदर्शित कर रही थी जिससे ब्रह्मा भी मोहित हो जाए, लेकिन तीन दिन आकर आकर्षित करने का प्रयास करने पर भी ठाकुर हरिदास प्रभावित नहीं हुए। क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, कृष्णे नामाविष्ट मना सदा हरिदास, औरण्ये रोदित होइला स्त्रीभाव प्रकाश। कृष्णे नामाविष्ट मना, कृष्ण के नाम में वो पूरी तरह आविष्ट मन करके जप कर रहे थे, कृष्णे नामाविष्ट मना सदा हरिदास, अर्थात मन के अंतःकरण से उनकी तीव्र इच्छा थी मैं कृष्ण की सेवा करूं, मैं कृष्ण को ही संतुष्ट करूं। तो उनके सामने कोई भी तत्व आता जो उनको विचलित करने का प्रयास करता, वो देखकर भी आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उनका आकर्षण कृष्ण की सेवा और कृष्ण को संतुष्ट करने में सन्निहित था। कृष्ण नामाविष्ट मना सदा हरिदास। तो हम लोगों के मन के विचलित होने का मूल कारण क्या है? कि मन में कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा तीव्र नहीं, और केवल मुख से और जिह्वा से हम लोग हरे कृष्ण कह रहे हैं, कह रहे हैं मुझे अपनी सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, लेकिन मन कह रहा है मुझे मत लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ, बाकी लोगों को पहले लगाओ, हमको थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा हम भोग वोग कर लें फिर लगा लेना। तो कृष्णे नामाविष्ट मना सदा हरिदास। तो इस तरह मन में हमारा विचार जब तीव्र नहीं होता तो इंद्रिय विषयों से हम आकर्षित हो जाते हैं और विपरीत तत्वों को देखकर हम उनके साथ विवाद करने लगते हैं। तो इसलिए जब जीव गोस्वामी रूप नारायण को देखे, रूप नारायण आए और रूप गोस्वामी को कहा विजय पत्र साइन करो, तो रूप गोस्वामी ने कहा लेके आओ। बोले इसका मतलब है कि मैं सबसे बड़ा यहां पे पूरा पंडित विश्व का, ब्रह्मांड का। बोले हाँ ऑफ कोर्स, आपसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, यू आर नंबर वन। लो साइन ले दिया, सर्टिफाई कर दिया। तो जीव गोस्वामी बोले ऐसे कैसे, हम उनको हराएंगे। जब पराजित किया, रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी बोला कहा किसने कहा तुमको? अरे वृंदावन में दूसरे को पराजित करने की भावना है ही नहीं, कृष्ण को संतुष्ट करने से क्या संबंध था इसका? कोई संबंध था ही नहीं, क्यों उसके पीछे पड़ गए? यू बिकेम डिस्ट्रैक्टेड। तो इसलिए ये मत सोचो कि डिस्ट्रैक्शन हमेशा एक किसी सुंदर विषय के रूप में आएगा। डिस्ट्रैक्शन हर प्रकार के रूप में प्रकट हो सकता है। कभी कभी बड़ा एक सुंदर परिस्थिति उत्पन्न होता है झगड़ा करने का, उसके प्रति भी हम लोग आकर्षित हो जाते हैं और जुट जाते हैं। लेकिन और देखा होगा लोकल ट्रेन में या यहां वहां जाते समय दो लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, चारों तरफ क्या होता है, एक भीड़ जमा हो जाती है, और फिर दोनों को शांत करने के लिए कुछ लोग फिर एक एक का साइड लेने। सो आर्ग्यूमेंट एंड फाइट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, सो वी हैव टू चूज अवर बैटल्स वेरी केयरफुली बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। तो इसलिए हमको इस भौतिक जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति आकर्षित नहीं होना है, और कृष्ण के नाम में मन आविष्ट करना है, अर्थात कोई भी परिस्थिति सामने आए तो पूछना है कि ये कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है अथवा नहीं। अनुकूल नहीं छोड़ दो। वो आके कहे अरे मैं आई एम नंबर वन, ऑफ कोर्स You will remain eternally number one, all glories। इस तरह से उनको हम अभिवादन करें और अपनी सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये रूप गोस्वामी का, जीव गोस्वामी का फटकारना बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी अपने आप में एक अस्त्र है, और इस अस्त्र के माध्यम से हम कृष्ण की सेवा करें, उस अस्त्र को दूसरों को पराजित करने में न प्रयोग करें। और इसलिए भक्ति का अर्थ है कि अपने हृदय के अंदर के अनर्थों को पराजित करना, दूसरों को पराजित करना नहीं। और इस टेंडेंसी को, इस भावना को हमें दबाना है और इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और जब बहुत सारे लोग एकत्रित एक समाज में आ जाएं, तो फिर कई बार हम लोग अपने आशय को भूल जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने लगते हैं, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, तो उससे भी बचना है। इसलिए निर्विकार हरिदास गंभीर आशय बोले ते लागिला तारे होइया सदै। तो निर्विकार होना हो, प्रसन्नचित होकर भक्ति करते रहना हो, आपका आशय गंभीर होना चाहिए। योर इंटेंशन शुड बी डीप एंड क्लियर कि मैं यहां भक्ति कर रहा हूं मेरे व्यक्तिगत संबंध को कृष्ण के साथ स्थापित करने के लिए, कृष्ण और मेरे संबंध को स्थापित करने के लिए अन्य कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं बन सकता, और इसलिए आई शुड माइंड माई ओन बिजनेस। तो इसलिए जब प्रभुपाद थे उनके 5000 शिष्य थे, इस्कॉन का स्ट्रेंथ 5000 था उस समय, आज इस्कॉन का स्ट्रेंथ 2-3 lakhs हो गया है। सो द कॉजेस फॉर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम विद इन हैज ऑल्सो ग्रोन, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो इसलिए भक्तों को देखकर हमें समझना चाहिए कि ये भक्त मुझे कृष्ण का स्मरण कराने में अनुकूल बने। तो उसी प्रकार हर भक्त जो टीका लगाया है, तिलक लगाया है, कंठीमाला लगाया है, वो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल बन सकते हैं। वही भक्त अगर कृष्ण की सेवा और कृष्ण का संतोष को छोड़कर अन्य कोई विषय टटोलने लगे, चर्चा करने लगे, वही भक्त विकराल माया का रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव का वेश धारण करके वो हमारे मन को कृष्ण की सेवा से विचलित कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा समझना चाहिए गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पर चलना है। केवल औपचारिकता मात्र के लिए किसी को स्वीकार नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि क्योंकि किसने कोई रूप धारण किया, वेश धारण किया, क्योंकि हम लोग ये चार दीवारी में हैं तो भक्ति अपने आप होती चली जाएगी। नहीं, इस चार दीवारी के अंदर भी हम मायावी तत्व के वशीभूत आ सकते हैं। किसी वैष्णव दीक्षित भक्त के साथ चर्चा करते हुए भी हम लोग माया के अधीन आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग कृष्ण भावना आंदोलन में हैं। भावना को नियंत्रित करना है, विचारों को नियंत्रित करना है, और इस बात को कभी न भूलें। कृष्ण नामाविष्टम मना सदा हरिदास, अरण्य रोदित होइला स्त्री भाव प्रकाश। अरण्य रोदित होइला मीन्स इट वॉज लाइक अ क्राइंग इन द फॉरेस्ट। अगर वन में अंदर जाकर चिल्लाएं तो केवल प्रतिध्वनि सुनेगी और कोई तो कोई है ही नहीं। इसलिए जब कृष्ण नाम में मन आविष्ट हो जाए तो चाहे सामने से कितने भी अलग अलग डिस्ट्रैक्शन आ जाए, हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे और उसको रेस्पॉन्ड करने की भी आवश्यकता नहीं, बिकॉज यू आर क्लियर अबाउट योर गोल। और जो लंबे समय तक भक्ति में सफल रहा है वो इस चेतना के साथ ही सफल रहा है, अन्यथा हर दिशा में आपका मन विचलित होगा और शनै शनै भक्ति से आपका ध्यान भटक जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है हरिदास ठाकुर का माया देवी के साथ। लेकिन इस प्रसंग को सुनकर हो सकता है कभी लगे कि अपने जीवन में तो ऐसा टेंशन है ही नहीं, क्योंकि पूना में गुफा ही नहीं है। लेकिन अपने मन के गुफा में ही कई अलग अलग अनर्थ छिपे हुए हैं जो हमको कभी भी किसी भी दिशा में आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए कृष्णे नामाविष्ट मना सदा हरिदास, मायादासी प्रेम मांगे इत्थे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मे। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं मायादासी कृष्ण की दासी माया प्रेम मांगे, वो आके भिक्षा मांगने लगती है। कब? जब देखती है कि मैं इतने विचलित करने का प्रयास कर रही हूं फिर भी विचलित नहीं हो रहा, सुंदर वस्तुओं से विचलित नहीं हो रहा, इसके मन में क्रोध पैदा करने का प्रयास कर रही हूं तो भी नहीं हो रहा, इसके सामने एक भक्त खड़ा किया जो उसको गाली दे रहा है फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, उसको प्रसाद दे रहा है, आलिंगन कर रहा है, वांछाकल्प तरु भेष्ट बोल रहा है, ये क्या है? उसने खतरनाक ईमेल लिखा, रिप्लाई में कह रहा है प्लीज फॉरगिव मी, ये क्या? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ईमेल संप्रदाय का अपराध है। मायादासी प्रेम मांगे इत्थे की विस्मय, ऐसी सहनशीलता को देखकर फिर मायादासी उस भक्त से ही प्रेम मांगने लगती है। साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय, साधु की कृपा और नाम के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। साधु कृपा कब होगी? जब दो बातें हम करेंगे, सेवा और संबंध। जब सेवा के समय हम लोगों का सम्मान करें और वैष्णवों के साथ संबंध रखते समय प्रेम का स्नेह के साथ व्यवहार करें, तो स्नेह और सम्मान जब हमारे संबंध और सेवा में हो तब साधु प्रसन्न होकर कृपा करते हैं, जब साधु कृपा करेंगे तब नाम में रुचि आएगी, तब जाकर नाम में आविष्ट होंगे, जब नाम में आविष्ट होंगे तब फिर मन यहां वहां विचलित नहीं होगा। इसलिए केवल साधना पे ध्यान न दें, साधना सेवा और संबंध तीनों महत्वपूर्ण है, तब जाकर मन संतुलित होगा, साधना में स्नेह उत्पन्न होगा संबंध में और सम्मान हम सेवा के समय भक्तों के प्रति कर पाएंगे। तो इस प्रकार ठाकुर हरिदास के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने भक्ति के जीवन में 192 तो नहीं लेकिन कम से कम एक गरीब 16 माला के रूप में तो प्रतिदिन करते रहे। 192 के सामने तो 16 माला तो बिल्कुल चाराना अठाना लगता है, लेकिन जो भी हो प्रभुपाद जी ने दिया है उतना ही हम करते रहें तो भी बहुत कुछ सिद्ध किया जा सकता है यदि हम सावधानी के साथ अपने भक्ति को करते रहें। इसलिए हमारे सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कितने मीटिंग्स में अटेंड करता हूं, कितने स्ट्रेटजी प्रेजेंटेशंस अटेंड करता हूं, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है बी कृष्णा कॉन्शियस। वहां से स्टार्ट होता है, जब कृष्णा कॉन्शियस होंगे उसके बाद बाकी सभी बातें कुछ तर्क रखेंगी, तथ्य रहेगा उसमें, अन्यथा केवल या वहां की बातें करते रहेंगे और मूल तत्व को हम भूल जाएंगे। इसलिए दिसंबर मैराथन के अंत में इतने ग्रंथों का वितरण करने के पश्चात हम प्रार्थना करें कि इन ग्रंथों का निचोड़ हमारे हृदय के अंतःकरण में प्रविष्ट करे और हमारे आचरण में विचारों में निर्मलता और शुद्धता आए और हम श्रील प्रभुपाद और राधा वृंदावन चंद्र जी को निरंतर संतुष्ट करके अपने जीवन को सफल बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्णा। आइए हम गौरांग प्रभु को धन्यवाद देंगे तीन बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल। आप सभी को पता ही है गौरांग प्रभु ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर है इस्कॉन जीबीसी के, वो ट्रस्टी है इस्कॉन जीबीसी कॉलेज के, वो डिविजनल वो मेंबर है जीबीसी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कमेटी और जीबीसी नॉमिनेशन कमेटी के लिए, और वो डिविजनल डायरेक्टर है डिवोटी केयर एंड टेम्पल डेवलपमेंट सिस्टम्स एंड एडमिन के वर्ल्ड वाइड, साथ साथ वो डायरेक्टर है जीईवी के, वो को डायरेक्टर है चौपाटी टेम्पल के, और वो ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर है भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर के। इसके साथ साथ पिछले करीब करीब 25 सालों में इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा प्रवचन दिए हैं, और ये करते हुए ये स्वयं सबके लिए जो ज्यादा प्रसिद्ध है वो उनके प्रसाद के लिए बड़ी बड़ी यात्रा रहने दो, या परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का 17वां उनका व्यास पूजा महोत्सव था उसमें भी हमने देखा कि वो स्वयं अपने हाथ से प्रसाद कुक करते हैं और भक्तों को खिलाते हैं।